101. नंदिनी और इप्सिता दोनों कपड़े बदल चुकी थीं। इप्सिता आराम से अपने बेड पर लेटी हुई थी। नंदिनी अंदर से कपड़े बदलकर जैसे ही बाहर निकली वो बेड पर आकर बैठ गई। इप्सिता ने नंदिनी को आते देखकर उससे पूछा, क्या हुआ, तुम समर्थ से बात करने गई थी, तुम्हारी उससे बात हुई? नंदिनी ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ हो गई हमारी बात, और उसने तो सीधे ही मना कर दिया क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। कोई बात नहीं, और वैसे मैंने आज काफ़ी सारा काम कर लिया तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही थक गई हूँ, मैं सो जाती हूँ, इशू तू भी सो जा। इप्सिता नंदिनी की बात सुनकर कुछ भी नहीं बोली। नंदिनी उसकी तरफ पीठ करके सो गई। इप्सिता को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने मन में कहा, अभिमन्यु क्या कर रहे होंगे इस समय, क्या हमें उनसे बात करनी चाहिए, और वैसे भी हमारे पास जो मैसेज आया, क्या हम अभिमन्यु को उसके बारे में बता दें? इप्सिता सोच ही रही थी कि उसने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और अभिमन्यु का नंबर डायल करने लगी। उसने कहा, ऐसे मैसेज आना कोई मामूली बात तो नहीं हो सकती, आई थिंक हमें अभिमन्यु से इस बारे में बात करनी चाहिए। इप्सिता ने तुरंत अभिमन्यु का नंबर डायल किया, लेकिन अभिमन्यु ने उसका कॉल ही रिसीव नहीं किया। वो थोड़ी परेशान होते हुए बोली, अभिमन्यु हमारा कॉल पिकअप क्यों नहीं कर रहे हैं? इप्सिता ये सोच ही रही थी कि उसने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी गहरी नींद में सो चुकी थी। तभी इप्सिता ने अपने आप को दिलासा देते हुए कहा, हो सकता है शायद अभिमन्यु भी थक गए हों और थकान की वजह से उन्हें नींद आ गई हो, इसीलिए वो हमारा कॉल पिक नहीं कर पाए होंगे। कोई बात नहीं, हम सुबह उनसे बात कर लेंगे। अगर अभिमन्यु हमारी मिस्ड कॉल देखेंगे तो वो खुद ही कॉल बैक कर लेंगे। जैसे ही इप्सिता इतना बोलकर फ़ोन साइड में रखने लगी, उसने अपनी आँखें बंद की तो उसके सामने अभिमन्यु का चेहरा आ गया। इप्सिता अभिमन्यु के चेहरे को अपने सामने आते देखकर मुस्कुराने लगी। उसने अपने मन में कहा, एक तरह से देखा जाए तो नंदिनी सही कहती है, चाहे हमारी शादी कैसे भी हो रही हो, लेकिन एक बात तो तय है, हमें हस्बैंड बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि अभिमन्यु जितने रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर, समझदार और केयरिंग है, हमने उनके जितना अच्छे दिल का इंसान आज तक नहीं देखा। अभिमन्यु की सारी बातें सोच सोचकर इप्सिता खुश हो रही थी। वो अभिमन्यु के बारे में ही सोचते सोचते सो गई। अगले दिन सुबह सब लोग कल की तैयारी में बिजी थे, और वहीं इप्सिता का ध्यान अभिमन्यु में ही लगा हुआ था, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और अभिमन्यु ने इप्सिता को कॉल बैक नहीं किया था। इप्सिता ने अपना फ़ोन उठाते हुए कहा, अभिमन्यु ने हमें दोबारा कॉल क्यों नहीं किया, क्या उन्होंने नहीं देखा, क्या वो काम में इतने बिजी हैं कि इतने दिनों में उन्हें एक बार भी हमसे बात करने का मन नहीं हुआ? इप्सिता के दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। तभी उसने कहा, हम भी बेकार की बातें सोच रहे हैं, एक काम करते हैं, अगर उन्होंने कॉल नहीं किया तो हम ही उनसे कॉल करके बात कर लेते हैं। उसने अभिमन्यु का नंबर डायल किया, लेकिन फिर से अभिमन्यु ने उसके कॉल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये बात इप्सिता को थोड़ी खटकने लगी। इप्सिता ने अपने मन में कहा, अभिमन्यु हमारा मैसेज और कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो ठीक तो होंगे ना, कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? इप्सिता के दिमाग में जैसे ही ये बात आई, उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ गॉड जी, अभिमन्यु बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके साथ कुछ भी गलत मत होने दीजिएगा। इप्सिता का ध्यान बार बार अभिमन्यु की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से उसकी एक बार भी अभिमन्यु से बात नहीं हो पाई थी और ना ही अभिमन्यु उससे मिला था। इप्सिता इस समय किसी से अभिमन्यु के बारे में कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, क्या करूं, एक बार नंदिनी को अभिमन्यु से मिलने के लिए भेजूं क्या? इप्सिता इतना बोलकर नंदिनी की तरफ मुड़ी। वो उसे कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी उसने खुद को रोकते हुए कहा, हम भी बिल्कुल पागल हो गए, कैसी बातें कर रहे हैं अभी? अगर हमने नंदिनी को अभिमन्यु से बात करने के लिए या उससे मिलने जाने के लिए भेजा तो वो बेकार में ही हमें छेड़ेगी। वैसे भी बस आज रात की ही तो बात है और कल तो वैसे भी हमारी शादी हो जाएगी, तो फिर? इतना सोचकर वो चुपचाप बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। उसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह से अभिमन्यु ही छाया हुआ था। वो अभिमन्यु की एक एक बातें याद कर रही थी। तभी उसने धीमी आवाज में कहा, शायद हम पागल हो गए, बार बार ना चाहते हुए भी हमें अभिमन्यु का ही ख्याल आ रहा है हमारे दिमाग में, और वो इतने काम में बिजी हो गए हैं कि उन्हें हमारी फिक्री नहीं है। एक शिकायत और बोलकर इप्सिता ने नाराज होने का बहाना ढूंढ चुकी थी। उसने अपना दिमाग अभिमन्यु की तरफ से हटाया और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह इप्सिता की आंख अपनी मम्मी की आवाज सुनकर खुली। इप्सिता बेड पर उठकर बैठी। उसने देखा नंदिनी अभी भी सो रही है। इप्सिता ने कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी। इप्सिता की मम्मी ने कहा, इप्सिता चलिए उठिए और तैयार हो जाइए, काफी सारी रस्में हैं और शाम के 6:30 का आपके फेरों का शुभ मुहूर्त है। हम नहीं चाहते कि आप जरा भी लेट हो, क्योंकि हम रानी सा और कुंवर सा को इंतजार नहीं करवाना चाहते,
आप समझ रही हैं ना हम क्या कह रहे हैं? इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वो उबासी लेते हुए बोली, हाँ मम्मी, जानते हैं हम लेट नहीं होंगे। आप बस ज्वेलरी वगैरह के बारे में बता दीजिएगा और हमें किस समय क्या पहनना है ये भी बता दीजिए, ताकि नंदिनी उसके अकॉर्डिंग हमारा मेकअप कर दे। इप्सिता की मम्मी ने कहा, नंदिनी आपका मेकअप नहीं करेंगी, हमने दूसरी मेकअप आर्टिस्ट बुलाई है, वो आपका सारा मेकअप करेंगी। इप्सिता अपनी मम्मी की बात सुनकर उनकी तरफ थोड़ी कंफ्यूज होते हुए देखकर बोली, लेकिन जब नंदिनी है तो फिर कोई दूसरी मेकअप आर्टिस्ट बुलाने की क्या जरूरत है? हम नंदिनी के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, किसी और के साथ हम ठीक से तैयार नहीं हो पाएंगी। इप्सिता की मम्मी उसके करीब आई और उन्होंने इप्सिता को डांटते हुए कहा, इप्सिता अब आप अपने राज परिवार से भी बड़े राज परिवार में जाने वाली हैं, तो अब आप अपने ये सारे नखरे बंद करिए। हर जगह पर इस तरह बेकार के नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। और हाँ, हमारी बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपको राजवंशी परिवार में जाने के बाद वहाँ की सारी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, इसलिए आप अपने बिहेवियर को पूरी तरह से बदल लीजिए। इप्सिता ने जैसे ही अपनी मॉम की बात सुनी उसने कहा, लेकिन मम्मी। इप्सिता इससे पहले कि अपनी पूरी बात बोल पाती उसकी मम्मी ने उसे घूरती हुआ देखा और वो चुप हो गई। उन्होंने इप्सिता को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ अच्छे से नहाओ और हमारी बातें याद रखना, आज तुम्हें लेट नहीं होना है और आज तुम्हारी शादी है, आज तुम्हारी प्रोफेशनल ब्यूटिशियन से ही तुम्हारा मेकअप होगा, बाकी सारे फंक्शन में वैसे भी तुमने अपनी फ्रेंड से ही मेकअप करवाया है, इसलिए शादी पर ऐसा नहीं होगा, शादी बहुत ही बड़ा दिन होता है, तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए। इप्सिता ने अपनी मॉम की डांट सुनी और वो चुपचाप वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम में जाकर इप्सिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज भी मम्मी हमें डांटने से बाज नहीं आई, आज हमारी शादी का दिन है, हमारी लाइफ का इतना बड़ा दिन, कम से कम आज वो हमें डांटती नहीं। लेकिन नहीं, उन्हें तो जैसे बिना हमें लेक्चर दिए खाना ही हजम नहीं होता है। इप्सिता खुद से ही सारी बातें बड़बड़ा रही थी, तभी वो शावर के नीचे चली गई और थोड़ी देर बाद बाथरूम पहनकर बाहर निकली। उसने देखा उसके रूम में रेड कलर का बड़ा ही हैवी लहंगा रखा हुआ है और साथ ही में नंदिनी भी है, जो अपने साथ वहां पर खड़ी किसी दूसरी लड़की से बात कर रही है। उसे देखकर ही समझ में आ रहा था कि ये वही मेकअप आर्टिस्ट है जिसे आज इप्सिता की मम्मी ने बुलाया है। इप्सिता उस लड़की और नंदिनी के सामने आकर खड़ी हुई और अपने बालों को पोंछते हुए बोली, नंदिनी। इप्सिता के मुंह से अपना नाम सुनकर नंदिनी उसकी तरफ देखने लगी। नंदिनी इप्सिता के बगल में आकर खड़ी हुई। तभी नंदिनी के सामने खड़ी मेकअप आर्टिस्ट बोली, हेलो मैम, मैं आज आपका मेकअप करूंगी, अब देखिएगा आप वर्ल्ड की बेस्ट ब्राइड लगेंगी।
इप्सिता उस लड़की की तरफ देखने लगी। तभी उसने कहा, हम आपसे एक बात कहें, आप बुरा तो नहीं मानेंगी, आपको आपकी फीस मिल जाएगी, बट क्या मैं अपनी फ्रेंड से अपना मेकअप करवा सकती हूँ? नंदिनी ने जैसे ही इप्सिता की बात सुनी उसने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, इशु क्या बोल रही है, तू चुप कर। उस मेकअप आर्टिस्ट ने इप्सिता की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी मैम, मैं आपका फेस खराब नहीं करूंगी, अगर जहां पर भी आपको अच्छा ना लगे, जहां पर अनकंफर्टेबल हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं पीछे हट जाऊंगी और आप अपनी फ्रेंड से मेकअप करवा लीजिएगा। डू यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम? इप्सिता उसकी बात सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओके फाइन। इप्सिता अपने बालों को सुखाने जा ही रही थी कि तभी नंदिनी ने उसे उसके लहंगे का ब्लाउज देते हुए कहा, ये पकड़ो, इसे पहन कर आओ, ये ब्लाउज और जीन्स पहन कर आओ, तुम्हारे बाल मैं सुखा दूंगी। इप्सिता ने वो ब्लाउज लिया और वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर में वो उस ब्लाउज को पहनकर बाहर निकली। इप्सिता के बाल गीले थे और नंदिनी उसके बालों को ब्लो ड्रायर से सुखाने लगी। वो मेकअप आर्टिस्ट इप्सिता का मेकअप करने लगी। इप्सिता मेकअप करवा तो रही थी लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। इप्सिता के मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे इतना परेशान देखकर नंदिनी ने पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या इशू? इप्सिता ने धीरे से ना में अपना सिर हिला दिया। तभी वो मेकअप आर्टिस्ट इप्सिता की तरफ देखकर बोली, आई नो मैम, आज के दिन सारी ही ब्राइड्स का ऐसे ही हाल होता है, वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने वाली होती हैं, इसीलिए उनके मन में अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं और वो काफी ज्यादा बेचैन हो जाती हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इप्सिता उस मेकअप आर्टिस्ट की तरफ हैरानी से देखने लगी। तभी उसने इप्सिता की तरफ देखकर कहा, मैम आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैम अपनी शादी के दिन सारी ही ब्राइड्स का ऐसा ही हाल होता है, अपनी आने वाली लाइफ को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाती हैं और उनके मन की बेचैनी बढ़ने लगती है। नंदिनी उस मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर बोली, आप तो सच में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लगती हैं, आपकी शादी हो गई है क्या? उस मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, नो मैम अभी नहीं हुई, मैंने जितनी भी ब्राइड्स का मेकअप किया है वो सब आज के दिन अपने होने वाले हस्बैंड को लेकर काफी परेशान होती हैं कि वो उनके साथ किस तरह करेंगे और फर्स्ट नाइट में क्या होगा, उनके ससुराल वाले किस तरह से उन्हें ट्रीट करेंगे, और भी कई सारे सवाल होते हैं, मैं समझा सकती हूँ। नंदिनी ने जैसे ही उस मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनी वो इप्सिता के कान के पास जाकर धीमी आवाज में उसे छेड़ते हुए बोली, सच में इशू, क्या ये बिल्कुल सही कह रही है? तो सच में इस समय अभिमन्यु और अपने ससुराल वालों को लेकर बेचैन हो रही है? इप्सिता ने नंदिनी को घूरते हुए देखा, फिर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम किसी को भी लेकर बेचैन नहीं है,
तुम जाओ जाकर रेडी हो जाओ, तुम्हें भी तो अभी रेडी होने में टाइम लगेगा, नंदिनी ने थोड़ा जोर देते हुए पूछा। नहीं, तू मुझे बता पहले, तू सच में जीजू को लेकर नर्वस हो रही है क्या? वो तेरे साथ फर्स्ट नाइट में क्या क्या करेंगे? इस पर इप्सिता ने गुस्से से कहा, अब अगर तुमने एक और शब्द कहा तो आई स्वेर हम तुम्हारी शिकायत मम्मी से कर देंगे। इप्सिता की धमकी सुनकर नंदिनी उसे घूरते हुए देखकर बोली, हाँ हाँ, अब तो तुझे तेरी मेकअप आर्टिस्ट मिल गई है, अब तो तू मुझे ऐसे ही भूल जाएगी। जानती हूँ मैं, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहती है जिससे कि तेरा अच्छा मेकअप हो जाए और मैं कहीं ऐसा ब्राइडल मेकअप करना ना सीख जाऊं, नंदिनी ने थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा। इप्सिता कुछ भी नहीं बोली, उसने बस धीरे से अपना सिर हिला दिया क्योंकि वो नंदिनी को बहुत अच्छे से जानती थी। क्रमशः